शेखर एक जीवनी, भूमिका। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है, 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना कि केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्द बुद्ध करने का प्रयत्न है। आप इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला। नहीं, आप मेरे एक शब्द को फिर से ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। संभव है आप जानना चाहें तो वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, ना उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, फिर कहा सुनी और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन का यति शीघ्र होने वाला है। फांसी का पात्र मैं को ही समझा जाता है, ना अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मन स्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भविष्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा है कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानो भावानुभव के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप से मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है, तो उस जीवन का मूल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए? इस जिज्ञासा की अनासक्त निमित्तता और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निजू और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथ में आने लगे। पो फटने का सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहते हुए सूत्र में मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोया रहा। यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। एक मास बाद मैं लाहौर किले से अमृतसर से जेल ले जाया गया। तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन उस रात के समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 300 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उसे प्राण दीप्ति को एक शरीर देने में लगाए हैं। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि विषय तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती, वह जीवन में मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। यदि अपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा, तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील और प्राणियों में उसके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंतर्गत हुआ एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवादी उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता, वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि वह कर्ता को नीरा निर्मित नहीं बना देता। यदि यूं कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल निर्यात की स्वीकृति ना होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा पर गहरा विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। तो सेकर, एक जीवनी की क्रांतिकारी नायक, ने अपने जीवन में इसी नियत के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है, यह भी एक मार्ग है। लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसलिए आप पाएंगे कि जीवन का पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं को भी जांच कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है, और विदेशी के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना को वो चोट से जीवन दीप्त हो उठता है, या तब जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति की शुभदृष्टा बन जाता है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लग्न है, निष्ठा है, दीनता है इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक ना होकर केवल हेतुवादी रह जाता है, और उसका हेतुवादी करुण और दयनीय जान पड़ते हैं। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियादी की कहानी है। आप कहते हैं कि या तो एक विजन नहीं, या एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंतर्दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे हिंदी की नम शरण लेता है, जैसे दर्शन। पैराग्राफ चेंज। क्या यह जीवन आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारण बनाकर ही चलेंगे। हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहाँ वियोग की कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसके अमुकी जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर, जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुंह कहीं भी जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है कि 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया छपी थी, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे, और एक ने यहाँ तक लिखा कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी, यद्यपि कुछ मजाक में, पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ है नहीं, तो दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी, तो वे समझेंगे कि उन्होंने धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है कि किंतु बात यह सच है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा आश्रित है कि आत्म घटित आत्मानुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है, का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना, और वैसा करते समय आत्म घटित के पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में एक ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति पर घटित और आत्मनिर्भर हो सकता है, यदि हम में सामर्थ्य है कि हम को परक्य, सेकेंड हैंड अथवा घटिया और असहत्य कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए T.S. इलियट की उस व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है। देयर इज ऑलवेज ए सेपरेशन बिटवीन द मैन हु सफर एंड द आर्टिस्ट हु क्रिएटर्स, एंड द ग्रेटर द आर्टिस्ट द ग्रेटर द सेपरेशन। हिंदी में, भोगने वाला प्राणी और सृजन करने वाला कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। पैराग्राफ चेंज। लेकिन एक लंबा विषयांतर हो गया है, और मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट के कथा अनुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सका हूँ। शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर की अभिसंचित कर रही है, और यह अभिसंचित ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंतर्गत वह सभी कल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है, अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है, अपने सयात की कहानी है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श मुझसे नहीं निभ सका है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यदि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का परिपंड भी है। इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी के निजी बातों कहकर उड़ा सके। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज, मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूँ कि यदि उस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता ना रहती, और ना ही इसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं को तो बात की या स्थान पे लेखक के देशाटन की परिचय से मेल खाते हैं। इस अंतिम साम्य के बारे में एक बात कह दूं, शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति क्षेत्र से अलग चला गया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक हूँ, इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का वश नहीं हो रहा है। एक पात्र की वृष्टा के लिए यह कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों का कठपुतली ना रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि हो वे पिरांडेली की साक्षी ले सकता है। पैराग्राफ चेंज। जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसे पाठक कैसे रोशनी में देखें, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुँचेगा, दो बाकी रह जाएंगे। शेखर एक जीवनी तीन भागों में विभक्त है, तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे हुए कर भी अलग अलग भी प्राय संपूर्ण हैं। कहा जा सकता है कि जीवन अस्तित्व में तीन स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा ना भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं है, जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। वे एक ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूंगा, किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग वे क्यों पढ़ें या उसके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर चले, उसके लिए कुछ निवेदन करना या अप्रासंगिक ना होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अभिप्राय की यदि उतना दंभ कर सकूं तो कहूं कि संदेश की दृष्टि से शेखर तीन भागों में एकांता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता है, और सहता है, उसी तरह जीवन के तीन भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है जो एक है, अविभाज्य है, मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कथा वस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसलिए वह चाहे कि कैसे भी हो, लेकर मैं पाठक के आगे पार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना कहूँगा कि यदि आप निर्णेता होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाएं। अंतिम लाइन, शेखर से आपका साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ, अब आप उसे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने, आज के युग में जब हम आप सभी संशिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। अज्ञेय जी।